गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीथ जम्बु फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूणं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते श्रुतज्ञान गम्यं नमस्ते नमस्ते नमो नमामि दीन कहे धनवंत सुखी धनवंत कहे सुख राजा कुभारी राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी तो इंद्र कहे कि विरंचि सुखी और विरंचि कहे सुख विष्णु को भारी पर दासन दास कहे तुलसी हरि नाम बिना सब जीव दुखारी खलवृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघार दिया कितना निरुपासक हूँ शिशु हूँ कभी वत्सल मां पुचकार दिया अवलोकत बालक सुप्त मुझे कर वीणा लिए मां झनकार दिया लख आरती आमा तम टारतिया मम कंठ पधारती भारतिया सुखधाम प्रभो पद पंकज में प्रेम लगाना भूल गए पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए उठतों को गिराना सीख लिया उठतों को गिराना सीख लिया गिरतों को उठाना कुछ बन ना सके स्वारथ में परमारथ भूले कुछ कहे ना सके कुछ बन ना सके मन की मल को धोने के लिए मन की मल को धोने के लिए सत्संग में आना भूल गए Thank you. हनुमंत लाल की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाँ हमारे श्रोता प्रेमियों, राठौर कैसेट के माध्यम से ये द्रौपदी चीरहरण की पावन कथा हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान की पावन गाथा हम रखें कि द्रौपदी का चीरहरण किस प्रकार से हुआ, उससे पहले आइए एक बार प्रभु का नाम हो जाए। भजमन नारायण नारायण नारायण, तो श्रोता प्रेमियों ये कहानी महाभारत के उस समय की है जिस समय एक बार पांडवों ने अपने यहां पर सुंदर एक महल की रचना की और उस महल को दिखाने के लिए सभी को बुलाया गया। भूपाल, युधिष्ठिर, भीमार्जुन, नकुल, सहदेव सभी मिलकर के आज दुर्योधन और साथ में जो शकुनी आया हुआ है उनको अपना महल दिखा रहे हैं कि आप आइए हम आपको अपना महल दिखाएं। और मित्रों यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने योग्य है, ये महल यहाँ पर ऐसा बना हुआ था या इसमें ऐसी कारीगरी की गई थी जहां पर जल भरा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ जैसे सूखा हो, जहां सूखा था वहां ऐसा लग रहा था कि जैसे जल भरा हुआ हो। बड़ा अजीब सा ये महल बना हुआ था और उस महल को देखने के लिए दुर्योधन चला जा रहा है अपने मामा शकुनी के साथ। और उधर देखिए महल के ऊपर द्रौपदी खड़ी खड़ी सब देख रही है कि दुर्योधन किस प्रकार से आ रहा है, और देखिए आगे क्या होता है। और मित्रों इस कहानी में मैं केवल अपनी भारतीय माताओं से इतना ही कहूंगा कि जीवन में आप जब भी कभी बोलें तो बड़ा सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ एक शब्द न जाने किसका जीवन तबाह कर दे। तीन चीजें जाने के बाद कभी वापस नहीं आती, जुबान से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और गया हुआ समय, ये पुनः जीवन में कभी दोबारा वापस नहीं आते। द्रौपदी अगर अपने जीवन में एक बार भी संभल कर बोलती तो शायद सज्जनों ऐसा समय नहीं आता जितना बड़ा महाभारत का युद्ध होता। देखिए कैसे क्या हो रहा है। भूपाल युधिष्ठिर भीम अर्जुन सहदेव नकुल को साथ मिले, पुत्री का किरण निज हाथ मिले, झूठी शोभा को देख देखो इंसान मगन हो जाते थे, पर ये असली वस्तु है क्या इसका ना भेद कुछ पाते थे। श्रोताओं ये बातें पढ़ करो, कुछ ख्याल करो सोचो मन में कैसे ये शिल्पकार यहाँ पर। अरे ऐसा सुंदर महल बना हुआ है जहां पर जल भरा हुआ है वहां पर थल का अनुभव हो रहा है, और जहां पर थल है वहां पर जल का अनुभव हो रहा है। अरे ऐसा महल देख करके सभी का मन जो है वो चकरा रहा है कि कैसी कारीगरी थी मित्रों हमारे देश के अंदर। इधर देखिए शकुनी के साथ जब दुर्योधन जा रहा था तो एक जगह वो समझा कि शायद तालाब है, तो उसने अपने कपड़े जो है ऊपर कर लिए, लेकिन बंद हुआ वहां पर ताला वाला कुछ नहीं था। शकुनी की भी बुद्धि इसको लखते ही फौरन चकराई, लोगों का ये हाल देख इन लोगों का, मुस्काए थे पांचों भाई, तुमको
भी बुद्धि चकरा जाती है कि ये कैसा महल है, यहाँ तो ये पता ही नहीं लगता है कि जल है या थल है। उधर देखिए आगे जब और पहुंचा, यानी पहले जहां पर तालाब नहीं था तो उसे ऐसा लगा कि यहां तालाब है और कपड़े उठा अपने जो उठा लिए, और यहां पर तालाब है तो दुर्योधन ये समझ रहा है कि यहां पर सूखा रास्ता है, और सीधा बेचारा जैसे चला गया धड़ाम से जाकर के तालाब में गिर पड़ता है। जान से सूखी जगह दुर्योधन मुस्काए, फुर्ती से आगे बढ़ा और गिरा नीर में जाए। बस मित्रों यहां से ही आप समझ लें कि युद्ध का ऐलान हो गया। अरे ये द्रौपदी खड़ी खड़ी अपने छज्जे पर देख रही थी महलों में, उसने जिस समय देखा कि दुर्योधन जो है वो जल में गिर पड़ता है, द्रौपदी ने अपनी जुबान को लगाम नहीं दी और एक ऐसा शब्द कहा, जानते हो क्या कहा? ये देख सभी खिलखिला उठी, बोलियो द्रुपद सुता मानी। तो है फिर दिखे अंधे का सुत है फिर दिखे, भूमि है या है ये पानी। पर अद्भुत कारीगरी निरख हो गया मुग्ध और अवाक हुआ। आज जिस समय द्रौपदी ने कहा अरे सखियो, अरे आज हमें ये मालूम पड़ गया अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे ना, द्रौपदी ने कहा बहनों अरे अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं, इसलिए इसको दिखाई कैसे पड़ेगा कि भैया ये जल है या सूखी जगह है। मित्रों गोली का मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन बोली का मारा हुआ व्यक्ति बचना बड़ा मुश्किल होता है। क्रोध आ गया दुर्योधन को अपने मन में, मारे क्रोध की ज्वाला में जलने लगा, लेकिन मामा शकुनी समझा रहे हैं भांजे मनुष्य को समय देख करके ही अपना कार्य करना चाहिए, जो समय से विपरीत चलते हैं या समय से पहले अपने कार्य को कर डालते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। लिया युक्ति से काम उस समय रोका गुस्से भारी को, लिया युक्ति से काम उस समय रोका गुस्से भारी को, सोचा पासे में फांसूंगा धर्मराज व्रत भारी। अभिमानी नारी को जांग पे अपनी बिठलाऊंगा, जांग पे अपनी बिठलाऊंगा इस अभिमानी नारी को। भावज की लाज लूटने, सुचि भावज की लाज लूटने, वो देवर पे पीर चला। दुष्ट दुशासन उस अबला का जब खेचने चीर चला हो। भर गया दुर्योधन भैया, लेकिन आज शकुनी ने समझाया, भांजे तुम चिंता क्यों करते हो, जुआ खेलने में चतुर और मुझ सम और न कोई, शस्त्र युद्ध तज धूत का युद्ध करो जिए जो। शस्त्र विद्या में तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जुआ खेलने में मुझसे बड़ा माहिर भांजे और इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, और इसका शौक युधिष्ठिर को बहुत है, लेकिन खेलने में निरे अनाड़ी हैं। है इसका शौक युधिष्ठिर को, लेकिन वो निरे अनाड़ी हैं। युधिष्ठिर को पर इसमें निरे अनाड़ी है, और इस त्रिभुवन दुर्योधन इसके अति चतुर खिलाड़ी है। जल्द भेज उन धर्म राज को बुलवाओ, राजी कर मीठी बातों से मेरे संग जुआ खिलवाओ। कला दिखलाता हूँ, दम भर उनकी जब संपत्ति पर चंपक मैं तुम्हें दिलाता हूँ। युधिष्ठिर को खेलने का बड़ा शौक है, मगर खेल में युधिष्ठिर निरे अनाड़ी हैं, इसलिए सबसे पहले उनको निमंत्रण भेजो। और भांजे तुम्हें नहीं मालूम, मैं जो हूं पासे डालने में बहुत बड़ा माहिर हूं, अरे उनको आप लाएं और फिर देखें कि मेरा हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, मेरे हाथ किस प्रकार से कार्य करते हैं। उधर तो दूत को भेजा गया, और इधर जो है वो अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं, कौन, दुर्योधन और शकुनी मामा, कि हे तात आप हमें आज्ञा दें कि हम जो हैं वो पांडवों के साथ यहां पर द्रुत कीड़ा करें, यानी जुआ खेलें। आज जब ऐसा सुना तो धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन बेटा एक बात समझ में नहीं आती है कि जब पांडव तुम्हारे भाई हैं तो तुम उनके लिए डाह क्यों करते हो, उनके लिए अपने हृदय में क्यों जलते हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम पांडव कितने सरल स्वभाव के हैं, पर देख जो दुखी होए, पर सुख लख जो हर साते हैं, गर सच पूछो तो वही मनुष्य जग में सज्जन कहलाते हैं। देखो बेटा, जो पराए दुख में दुखी हो और पराए सुख में सुखी हो, वही इंसान सज्जन माने जाते हैं। युधिष्ठिर का कितना भी औहदा बढ़ गया, कितनी भी उसकी दौलत बढ़ गई, लेकिन उसमें बुराई क्या है? आखिर वो हमारे भाई ही तो हैं, आपसी फूट से कोई लाभ नहीं है। युधिष्ठिर का तेरे मन में ऐसुत धन खटकता है, ऐसुत धन खटकता है, क्यों धन खटकता है? युधिष्ठिर का तेरे मन में तो ऐसुत धन खटकता है, कहे में औरों के आके, कहे में औरों के आके, तू घर वालों से जलता है, घर वालों से जलता है, उनकी बढ़ती में है दुर्योधन, समझ कुल की बढ़ती में तू उनकी बढ़ती दुर्योधन, नष्ट होने से उनके गुरुकुल को भी अब निगलता है, गुरुकुल भी निगलता है, धन खटकता है। मगर दुर्योधन कहने लगा है, पिताजी अरे जो आपने कहा है वो हमें मंजूर है, लेकिन मेरा अपमान शायद आपने नहीं देखा है। हे पिता, अरे जिस समय मैं सभा को देखने के लिए गया पांडवों की, उस समय आप जानते हैं उस भीम ने मेरी हंसी उड़ाई थी, उस द्रौपदी ने मेरी हंसी उड़ाई थी और मुझसे क्या कहा था? जिस समय देखने गया सभा तब भीम ने हंसी उड़ाई थी, सुना भी अंधे का सुत कह अपने मन में मुस्काई, बलिहारी है मनसाई।